नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका अपना कार्यक्रम सुहाना सफर में। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो, लेकिन इंसान तुम्हारा सारा शहद चोरी करके ले जाता है। तो मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि ये चिड़िया, इंसान मेरा केवल शहद ही चुरा सकता है, लेकिन मेरी शहद बनाने की जो कला है उस पर मेरा ही अधिकार है। सचमुच हम सब अपने जीवन में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमारे अंदर बहुत कलाएं हैं और उन कलाओं का बहुत विकास भी कर सकते हैं। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आज परिचर्चा का प्रारंभ करेंगे और इसके लिए सूर्य भाई जी, गीता बहन जी, गीता संतोषी बहन स्टूडियो उपस्थित हैं। आइए इन तीनों का स्वागत करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी, जैसे हमारे अंदर कलाएं तो होती है, विशेषताएं भी होती है, लेकिन कई बार उन कलाओं का अभिमान भी आ जाता है और कभी कभी वो जो हम भूल चुक की चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड में, उस भूल का भी प्रभाव हमारे कलाओं पर ही पड़ता है।
पहले तो मुझे मधुमक्खी की बात सुन के बड़ा आनंद हुआ।
जी जी,
मधुमक्खी ये भी सोचती होगी मैं हम सब मिलके शहद तैयार करते हैं
जी,
लोग उससे सुख पाते हैं
जी,
हमारा
जी,
जीवन धन्य है
जी,
कितनी दवाइयों में वो काम आता है।
हाँ, हाँ,
कितनों के मुख को मीठा करता है और कितनों के जीवन को मीठा,
निस्वार्थ भावना से।
तो बहुत अच्छी बात है, हम मधुमक्खियों से सीखें। हाँ, कि हमारा जीवन दूसरों के लिए हो, हम दूसरों को मिठास देते चले, उनके जीवन में मिठास भरते चले, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी जो बात है कि शहद ही तो गया, गला तो नहीं गई।
जी जी जी,
मुझे जब आप ये बात सुना रहे थे मुझे एक सच्ची घटना याद आई। दिल्ली में एक कन्या PhD कर रही थी। अब आजकल लिखते तो नहीं, लैपटॉप में सफेद था। अब वो अपना ये जो बैग होता है पीछे लगाने का, उसमें लैपटॉप रखा और वो अपने कॉलेज जाती थी। अब बसों में भीड़, अब उसका लैपटॉप किसी ने पीछे से निकाल लिया। अब समझ सकते हैं PhD का सब कुछ उसमें था, जो उसने थेसिस तैयार करनी थी उसका सब कुछ उसमें था, और वो उसका चोरी हो गया। माँ बाप दोनों डॉक्टर, मैं उनके घर गया, बताया कि देखो लड़की बहुत निराश हो गई है। मैंने उसकी सारी बात सुनी और मैंने उसको कन्विंस किया कि तुम अब बिल्कुल निराश न हो
जी,
और कभी कभी कोई घटना बड़ी कल्याणकारी हो जाती है, तुम इससे भी अच्छा लिख पाओगी
जी, जी।
और बस उसकी खुशी लोटी और मेडिटेशन से उसकी बुद्धि फिर से स्टेबल हुई और उसने बहुत अच्छा तैयार कर लिया। तो कभी कभी ऐसी चीजें भी जीवन में हो जाती
जी,
तो क्रिएटर हम हैं। अगर मधुमक्खी क्रिएट कर सकती
जी, जी,
है
जी, जी,
वो निराश नहीं होती जब उसका छत्ता तोड़ दिया जाता है और उनको उड़ने के लिए मजबूर कर दिया, देखिए उनका तो घर भी उजाड़ दिया
जी,
जाता
जी,
है
जी, जी।
हम भी अपने जीवन में ऐसा साहस और हिम्मत बटोर कर रखें
जी,
कि जीवन में जो कुछ भी उतार चढ़ाव आते हैं, मान लो धन ही चला गया, मकान चला गया, कुछ भूकंप हो गया, सब कुछ गिर गया, लेकिन क्रिएट तो हमने किया था ना, तो हम फिर क्रिएट कर लेंगे। एक तो ये बहुत अच्छी बात हमारे बुद्धि में रहनी चाहिए। मिस्टेक की बात जब चल रही है तो मुझे याद आया एक सच्ची घटना। एक स्टूडेंट थोड़ा सा पढ़ाई में लापरवाह था बुद्धिमान लेकिन लापरवाह था। टीचर पढ़ा रहा था, वो अपने इसमें मोबाइल में लग गया, ध्यान गया टीचर का, उसने उसको दो चार बातें सुना दी, तनातनी हुई क्लास के बीच में और लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसने एक थप्पड़ अपने मास्टर जी को मार दिया
जी, जी।
अब ये बात तो बड़ी खतरनाक हो गई और सारा स्टाफ जो था टीचर्स से सब इकट्ठे हो गए, इसको निकालो, बस उसका अखबार में भी दे दिया, नाम बदनाम हो गया, अब उसको कोई एडमिशन नहीं देता था। अब माँ बाप भी परेशान, अब वो भी उसको बहुत कुछ बोल रहे हैं, तुम्हारा क्रोध इतना ज्यादा
कि और गलती भी किया कि टीचर जिसको भगवान के समान मानते
गुरु गुरु मानते हैं, वो सिखा रहा था, लेकिन आखिर में समझौता हुआ। माँ बाप ने बच्चों को कहा गुरु के चरण छूने पड़ेंगे और बार बार उससे माफी मांगनी पड़ेगी तुम्हें, और कहो मुझे एक के बजाय 10 थप्पड़ आप मार लो मास्टर जी। तब लेकिन फिर टीचर्स ने तो बहुत विरोध किया कि नहीं, इसको बिल्कुल क्षमा नहीं देनी, दान नहीं देना। लेकिन वो जो अध्यापक थे वो थोड़े से शालीन थे, उन्हें कहा चलो कोई नहीं, मैं इस बच्चे का जीवन नहीं बिगाड़ना चाहता, अगर ये अपनी मिस्टेक से सदा के लिए भूलों से मुक्त हो जाता है तो ये भी इसके लिए कल्याणकारी होगा। उसने उसको प्यार किया और उस दिन से उस बच्चे के जीवन में इतना परिवर्तन हुआ, बुद्धिमान तो था वो लेकिन बुद्धि का उपयोग नहीं हो रहा था। उस दिन से वो फर्स्ट क्लास
सीख मिल गई
और उसने बहुत आगे तरक्की कर ली।
जी 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 जी, उनकी जो कई चीज गुम हो गई या फिर उनके कुछ लाश हो गए तो वो किसी के सामने रख नहीं पाते हैं, वो राज्यों का अभ्यास भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग क्या करें जो अपने मन को उन सुंदर विचारों से भरें और उनको सही गाइडेंस मिले, वो अपने मन को कैसे एकाग्र करें जो वो सब बातें वापस उनके मन में आ जाए।
जैसे लाइफ में बहुत बार ऐसे चीजें भी गुम हो गए हैं और जो रिलेशन हम सोचते थे कि बहुत अच्छे रिलेशन है वो भी माना बाद में एकदम मीनिंगलेस हो गए हैं। तो वो सारे लाइफ में जब होते हैं तो तब एक तो शेयरिंग इम्पोर्टेंट है
जी।
और पेरेंट्स के साथ शेयरिंग कर सकते हैं और सिबलिंग के साथ, और अगर ये भी नहीं हो जाए तो हम लाइफ को नया शुरू करें, माना अगर रिलेशंस है तो न्यू रिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ गुम हो गया लाइफ में तो जो टैलेंट उसमें समाया हुआ था तो उसको हम फिर से दूसरे में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपने ऐसे स्टेबिलिटी हम मैंने देखा है
जी 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 जी,
मेरे फ्रेंड्स में भी देखा है ऐसा कि डिग्री एक चला गया, जैसे बीटेक शुरू किया था हमने, फिर वो नहीं कर पाए तो उन्होंने फिर दूसरे कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लिया है। तो ऐसे दो तीन उन्होंने कोर्सेस चेंज किया है, लेकिन बाद में वो आते थे मेरे पास तो ऐसे लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहे हैं ऐसे, लेकिन बाद में बहुत सारे कोर्सेस बाहर भी है जो 6 मंथ्स के कोर्स भी है
जी।
तो उससे भी वो अच्छा जॉब अभी कर रहे हैं, नियरली अभी मंथली इनकम उनको मोर देन 1 लाख आ रहा है विद इन 4 ईयर्स में, इतना डिफरेंस। तो भले कोई डिग्री नहीं है लेकिन सिर्फ कोर्सेज से उन्होंने पिकअप कर लिया,
मतलब कंफ्यूज ना हो बल्कि आपके अंदर
चॉइसेस बहुत सारे हैं लाइफ में। जैसे बचपन में मैंने सुना था कि एवरीवन डाइस बट नॉट एवरीवन लिव्स, तो हर एक मरता ही है लेकिन हर एक जीता नहीं है। तो हमको जीना है, कैसे भी करके लाइफ को जीना है, जिंदगी जीना है।
जैसे हम चर्चा हो रही है हमारी भूल के ऊपर कि बाल्यकाल में कभी भूल हो गई, कभी युवा काल में भूल हो गई, तो कई बार हम जो भूल करते हैं उनको हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। हम आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एक होता है कि आदमी अपना क्षमा खुद मांग ले और एक होते हैं बड़े क्षमा कर दें। जैसे भाई साहब ने बताया कि भाई वो टीचर ने उस विद्यार्थी को क्षमा कर दिया तो विद्यार्थी का जीवन बदल गया,
बिल्कुल।
लेकिन ऐसा कई बार
मुझे भी एक कहानी याद आ रही है और बिल्कुल सच्ची कहानी है
जी।
एक जैन भिक्षु थे, एक दिन रात को एक चोर उनके यहाँ पहुंचा और गर्दन पर छुरा रख दिया कि जो कुछ तुम्हारे पास हो दे दो मुझे
जी।
तो जैन भिक्षु थे, उन्होंने कहा कोने में पोटली पड़ी है जो है ले जाओ। अब चोर उस पोटली को लेकर के आया, देखा बहुत कुछ है इसमें तो लेके चलने लगा। तो जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, जो जैन भिक्षु थे, कि थोड़ा मेरे लिए भी तो छोड़ दो, मैं भी तो खाऊंगा पीऊंगा, मेरी भी तो कुछ जरूरत है। हाँ, बाकी तुम ले जाओ, बाकी थोड़ा मेरे लिए छोड़ दो। तो उसने थोड़ा सा उन जैन भिक्षु के लिए छोड़ दिया। जब वो दरवाजा पार करने लगे तो जैन भिक्षु ने पीछे से आवाज लगाई, अरे तुम्हें इतना सारा सामान दिया है, इतना सारा खजाना दिया है, कम से कम धन्यवाद तो बोल दो। तो उसने दरवाजे से निकलते हुए मुस्कुराते हुए उसको धन्यवाद बोला। अब वो चोर उस खजाने को एक ज्वेलर के यहाँ लेकर के गया बेचने को। ज्वेलर ने वो पहचान लिया कि ये तो राजकोष से आया हुआ धन है, क्योंकि वो ही कुछ इस तरह के ज्वेलरी जो है राजाओं के यहाँ पहुंचाते थे जिसपे उनका कुछ सिंबल भी होता था। तो उसने ये पहचान लिया कि ये तो राजा फैमिली से आया है, और उसने वहां सूचना दी कि आपके राजकोष से कुछ चोरी हुआ है और उस चोर को मैं जानता हूँ। तो राजा ने उसे अरेस्ट किया चोर को और कहा कि तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मेरे राजकोष से धन चोरी कर लो, तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम्हें सीधा मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो वो चोर गिड़गिड़ाता है, कहते कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे राजकोष से चोरी किया ही नहीं है, मैं तो जैन भिक्षु के यहाँ गया था और वहां से ये लेकर के आया हूँ। तो उसने कहा ठीक है, जैन भिक्षु को भी पेश किया जाए। तो जब जैन भिक्षु वहां गए तो राजा उन्हें पहचान गए कि किसी अवसर पर उन्होंने खुशी खुशी उन्हें दक्षिणा दी थी वो, तो उन्होंने कहा कि आपने इसको दे दिया चोर को, तो मेरी अनुमति से लाया
जी।
और मैंने ही इशारा करके बताया कि वहां रखा है और उसने थोड़ा सा मेरे लिए भी छोड़ा और आते समय मुझे धन्यवाद भी बोला, इसलिए चोर कहां से हो गया, ये चोर नहीं है। ये बात सुनकर राजा ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन उस जैन भिक्षु के पॉजिटिव एटीट्यूड से, उसके क्षमा भाव से, उसकी नेचर से एक चोर का जीवन बदल गया। उसी दिन से वो चोर उस जैन भिक्षु का परम शिष्य बन गया और इतना उसने प्रचार प्रसार किया ज्ञान का, अध्यात्म का, कि वो आज रोल मॉडल के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने क्षमाशील नेचर से, अपने रहम दिल से, दया से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से पता नहीं कितनों के जीवन बदल सकते हैं।
जी जी भाई जी, कैसे, जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे साथ इसने कुछ घटना किया या मेरे साथ कुछ गलती की, अब इनको सजा मिलना चाहिए, मैं क्यों क्षमा करूं, ऐसा भी कई बार मन में आता है कि हरेक के अंदर नहीं आता कि मैं आपको सबको माफ कर दूं, क्षमा कर।
कई लोग इस क्षमा भाव को हर फील्ड में उचित भी नहीं मानते और होता भी नहीं है। इतिहास में तो पृथ्वीराज पर भी मोहम्मद गोरी आक्रमण करता था,
जी, जी, जी।
उसको वो क्षमा कर देते। महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ का मंदिर लूटा था, वो भी बार बार भारत के छोटे राजाओं पे आक्रमण करता था, लूट के ले जाता था। उसका लक्ष्य था लूट के ले, ये लोग गरीब थे बहुत और भारत से लूट फूट के अपना प्रजा को सुखी रखते थे, तो क्षमा करते रहे लोग। वो आते रहे, लूट के लेते रहे, नहीं तो दो राजा भी यहाँ के मिल जाते तो उसको मार डालते, नष्ट कर देते। तो इतिहासकार ये कहते हैं यहाँ के ये जो राजाओं में क्षमा भाव,
ये मैंने यहाँ राजाओं के संस्कार में थी कि उनकी भी क्षमा कर दो जो चोरी कर,
तो जो राजाओं का ये संस्कार है गलत है।
जी,
तो पृथ्वीराज जैसे शक्तिशाली सम्राट को और वो छोटा सा मोहम्मद गोरी काबुल का बादशाह हरा दे, इम्पॉसिबल था। इसलिए वो कहते हैं क्षमा नहीं करना चाहिए। और एक जो कॉमन मैन है उसमें एक दो तीन गलतियां क्षमा योग्य हैं, लेकिन कोई इसका डिसएडवांटेज उठाता रहे और गलतियां कर करके क्षमा मांगता रहे,
जी जी जी,
जैसे धर्मों में भी है कि भगवान से क्षमा मांग लो, माफ कर देगा।
अगर श्री कृष्ण शिशुपाल जैसे दुराचारी पापाचारी की 100 भूले माफ कर सकता है, तो जो हम श्री कृष्ण को अपना इष्ट देव मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, क्या हम लोगों की 10 भूले माफ नहीं कर सकते? लेकिन बात यदि सेल्फ डिफेंस की है, बात यदि देश की सुरक्षा की है, तो बात अलग है।
जी जी जी,
उसकी बात अलग है। लेकिन अगर छोटी मोटी भूले हैं मेरी रोजमर्रा की दिनचर्या में, मेरी फैमिली रिलेशन में, या फिर मेरे कारोबार के, उसमें बात बड़ी नहीं है, उनको तो माफ करने में कोई हर्जा नहीं है, मैं समझती हूँ।
हाँ देखिए, उसमें भी अगर उनको माफ करने के बाद वो चेंज हो जाएं, जैसे हमने स्टूडेंट की बात कही, वो चेंज कर दें अपने को और वो अपने को महान ऐसा बना दें कि उसकी भूल को लोग भूल जाए और उसको वरदान मांगने लगे, तो यहाँ क्षमा दूसरों के लिए वरदान और क्षमा करने वाला व्यक्ति बहुत महान होता है। कहा यही जाता है कि एक महान व्यक्ति, एक शक्तिशाली व्यक्ति ही दूसरों को क्षमा कर सकता है। तो जैसे गीता बहन ने कहा, जहाँ बात डिफेंस की है, मान लो आतंकवादी आ रहे पाकिस्तान से हमारे देश में, सब जानते हैं, हम कहें उन्हें क्षमा कर दो, मारो नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो हम सभी इसकी विशालता को भी समझें और क्षमा उनको करें जहाँ सुधरने की गुंजाइश हो, नहीं तो कलयुग के अंत में लोगों की ये मेंटेलिटी है, वो हर चीज का दुरुपयोग करने लगते हैं, भाई ये व्यक्ति तो बहुत सहनशील है, क्षमाशील है, ये तो हमें क्षमा कर ही देगा, तो करते रहो। लेकिन इससे, ऐसी क्षमाशीलता से दूसरों का नुकसान हो जाता है, इसलिए हमें क्षमाशीलता के साथ विवेकशील भी बहुत होना चाहिए।
जी 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 जी, जी। गीता बहन, आप ट्रोमा सेंटर पर आप सेवा देते हैं, कार्यरत हैं, आप लोगों के बीच रहते हैं, बहुत सारे लोग आपके सामने आते हैं और इस तरह की परीक्षाएं आपके सामने आती होगी, भाई किसी को क्षमा कर दें या किसी से क्षमा मांग लें, आप ऐसे सिचुएशन में क्या करती हैं?
जो मैं इक्विपमेंट की जो मेंटेनेंस का है, वो बहुत सिर्फ डायग्नोसिंग का नहीं है, थेरेप्यूटिक भी होते हैं, माना वेंटिलेटर जो है वो थेरेप्यूटिक है, माना उसमें कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जनरली तो स्टैंड बाय रखते हैं, लेकिन हमारा एक मिस्टेक भी किसी का लाइफ भी ले सकता है।
जी 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 जी,
ये भी होता है। तो इसलिए
मतलब पूरा ध्यान रखना पड़ता है,
तो इसलिए हम प्रोटोकॉल्स बनाते हैं वहाँ पर, तो कि ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। अगर वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली मिस्टेक्स होते हैं, इसलिए हम पहले से ही प्रोटोकॉल्स बनाते हैं। और बाय चांस अगर इसने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है
जी,
तो उसको कुछ दिनों तक तो मना ही करते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वो मेन फील्ड होता है।
एक प्रकार से पनिश देते हैं, सजा देते हैं,
किसी के प्राणों की बात है, किसी की जान जा
सकती है वहाँ पर। वी कैन नॉट फॉरगिव, वहाँ पर फॉरगिव माना इंटरनली फॉरगिव अलग है, लेकिन लेट गो नहीं कर सकते, एक्शन लेना पड़ता है।
जी 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 जी, ये भी बहुत समझने की चीज है कि कहाँ पर अपने को क्षमा करना है, कहाँ किसी का जीवन का सवाल है, तो वहाँ पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप बीच में सबके बीच रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, आपको कभी कभी ऐसा चिड़चिड़ापन आता होगा, आपके मन में कुछ ऐसे संकल्प चलते होंगे, आप इस समय क्या अभ्यास करते हैं वहाँ पर?
पहले तो एडजस्ट होने में, नया एनवायरमेंट में आते हैं तो एडजस्ट होने में टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे ये मन में ये बात बैठ गया है कि लोग नहीं बदलेंगे
जी।
इधर आके 8 साल हुआ, लेकिन कभी ये महसूस तो नहीं हुई कि ये चेंज हुए हैं। लेकिन खुद को चेंज करना शुरू कर लिया अभी अकॉर्डिंग टू उन लोगों के साथ। जैसे अभी वो ऐसे ही कर रहे हैं तो हमको कैसे करना है, माना हमको तो लास्टली वो सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर हम वो मैन ओरिएंटेड या एम्प्लॉय ओरिएंटेड होंगे, जैसे कोलीग ऐसे ही कर रहे हैं, अगर तो काम नहीं हो पाएगा। तो सर्विस ओरिएंटेड होंगे तो आगे बढ़ेंगे, अंदर से संतुष्टता नहीं आती है। तो मैंने यही सीखा है कि सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए।
जी, 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 जी।
चिड़चिड़ापन वगैरह वो आते हैं, लेकिन उसको साइड में रख के पहले सर्विस करते हैं। फिर जो इश्यू क्लियर करना है कोशिश किया क्लियर करने का, नहीं होता है तो छोड़ देते हैं।
आपके साथ वाले हैं, आपको कुछ बोलते होंगे, आपको चिढ़ाते होंगे, तो उनके लिए कभी गुस्सा नहीं आता?
नहीं, उसको अभी सुनते हुए भी नहीं सुन रहे।
अच्छा।
क्योंकि वो अभी वो समझ नहीं रहे कि वो गलत कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वही करना करेक्ट है।
कि हम कई बार दूसरों को समझाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वो समझते ही नहीं है, तो फिर अपने को ही समझा लेते हैं।
अपने को भी समझा लेते हैं, और कभी कभी वो जो गलती कर रहे हैं जिससे मरीजों को कष्ट हो सकता है, उसको भी ठीक।
वो बड़ी बात है कि अगर कोई मरीज का जहाँ पर प्रश्न है, पेशेंट का जीवन का प्रश्न है, तो वहाँ पर तो आपको थोड़ा पूरा ध्यान रखना ही पड़ेगा।
क्योंकि वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट है, जरा मिस्टेक से उसके लोग भी भड़क सकते हैं, डॉक्टर की या जो स्टाफ है उसकी जरा सी गलती से उसकी जान भी जा सकती है। एक सुंदर बात अभी स्पिरिचुअलिटी की सभी को कहना चाहूंगा, चाहे वो घरों की बात हो, डिपार्टमेंट की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, किसी भी संगठन की बात हो
जी,
यदि उसमें 2-4 बड़े लोगों की मनोस्थिति अच्छी रहेगी
जी,
तो सब कुछ अच्छा होता जाएगा। बल्कि मैं तो इतने सूक्ष्मता से बात कहूंगा, जैसे इनको मेंटेनेंस का काम है, मशीनें हैं बहुत सारी, अगर इनकी मनोस्थिति बहुत सुंदर है तो सभी मशीनें ठीक ठीक काम
करेंगी। मना उनको ये साधारण भाषा में समझे कि अपने मन को भी मेंटेन करके रखें।
बिल्कुल, मन को अगर मेंटेन कर लिया ठीक से, उसे पीसफुल रखा, काम एंड क्वाइट,
तो मशीन भी मेंटेन,
तो मशीन ऑटोमेटिकली काम अच्छा करती रहेगी। तो ये एक बड़ी सूक्ष्म गति है कि मनुष्य के मन का प्रभाव मैटर पर बहुत गहराई से पड़ता है। तो इसका हम सभी को अपने अपने घरों में भी ध्यान रखना चाहिए। मान लो एक गृहिणी भोजन ही बना रही है, अगर उसकी मनोस्थिति अच्छी है तो उससे कभी गैस खुली छूटेगी नहीं, ताकि गैस फैल जाए और माचिस या वो लगाए तो एकदम से चारों ओर आग भड़क उठे, उसे ये होगा नहीं। और अगर मान लो उसकी मनोस्थिति बहुत अच्छी है, जैसे कि केस सुनते हैं कि दूध उबल रहा था, बहन जरा काम करने गई, ऊपर से छिपकली गिर गई, दूध जहरीला हो गया, जिसने पिया वो सब मर गए, लेकिन अगर मनोस्थिति बहुत अच्छी, अगर मेडिटेशन का बहुत अच्छा अभ्यास होता है, तो उसको आभास हो जाएगा समथिंग इज रॉन्ग, या तो वो गिरेगी तो उसकी आवाज उसको सुन जाएगी और वो उसको फेंक देगी, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, या वो ऐसा करेगी कि उसको एक संकल्प आ जाएगा, आज इस दूध को अभी गर्म तो हो गया, इस बर्तन में दूसरे बर्तन में बदल देती है, और जैसे बदलेगी तो उसे सब क्लियर हो जाएगा। तो मनोस्थिति का प्रभाव सिचुएशंस पर, एनवायरमेंट्स पर, मशीनों पर, साथियों पर, सब पे बहुत गहरा पड़ता है। इसको सभी ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी मिस्टेक्स से बच जाएंगे।
ये बात बिल्कुल सही है, कैसी भी बड़ी परिस्थिति हो लेकिन मनस्थिति सही हो तो परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है। परिस्थिति हमारे अनुकूल बन जाती है, हमारे फेवर में आ जाती है अगर हमारी मनस्थिति ठीक है। जो भी मैंने कर्म किए उसका प्रभाव किस किस पर पड़ा, एक तो ये जो प्रकृति मेरे चारों ओर है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, दूसरा जिसके साथ मिलकर किया, कुछ अच्छा किया किसी के साथ, बुरा किया किसी के साथ, तो वो कौन, वो है आत्माएं, मैं भी आत्मा हूँ, असर और अविनाशी है, तो ये जो प्रभाव है मेरे कर्मों का ये भी सदा चल रहा है। जब तक हमारे कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं हो जाते तब तक ये हमारे साथ चलते हैं। बात यदि प्रकृति की है, प्रकृति जो हमें सदा सुख देती है, आज असंतुलित हो गई, कहीं सूखा पड़ रहा है तो कितने लोग सुसाइड कर रही है, भूखे मर रही है, पीने को पानी नहीं है, कहीं बारिश हो रही तो बाढ़ में लोग बह गए, कहीं सुनामी आ गई तो शहर नष्ट हो गए, कहीं बादल फट गए तो पूरा तबाह हो गया एरिया, प्रकृति असंतुलित तो हो रही है। क्यों? जैसे मेरे मन में निगेटिविटी आई, मनोविकारों की प्रविष्टता हुई, मेरे विचारों में निगेटिविटी आई, तो वो निगेटिव वाइब्रेशन सबसे पहले प्रकृति को गए, और जो शक्तिशाली सुखदायी प्रकृति थी कहीं ना कहीं वो असंतुलित हुई, दुखदायी हुई, और उसने दुख देने शुरू कर दिए। ठीक इसी प्रकार से जो भी मैंने कर्म किए, अच्छे बुरे सुखदायी या दुखदायी, वो आत्माओं के साथ किए, वो प्रभाव वो लेकर के मेरे साथ आ रहे। कभी कौन कहां किस मोड़ पर आता है, कुछ लेके चला जाता है, कुछ दे करके चला जाता है, कोई स्माइल दे जाता है, कोई आंसू दे जाता है, कोई हार का कारण बन जाता है, कोई जीत का कारण बन जाता है। अगर मेरे कार्मिक अकाउंट नेगेटिव है आत्माओं के साथ, चाहे वो इस जन्म में है या पूर्व जन्म से रिलेटेड है, तो उनके मन में जो मेरे लिए नेगेटिविटी है, जो खिन्नता है, जो क्रोध है, जो उन्हें भी नहीं पता
जी,
लेकिन एक अनजाना सा छिपा हुआ है आत्मा के अंदर
जी, जी, जी,
जो मुझे निरंतर एक नेगेटिविटी दे रहा, मेरे मार्ग को, मेरे जीवन को बाधित कर रहा जी, है जी, इस खिन्नता को, इस बदले के भाव को यदि मुझे शांत करना है, इससे अपने कर्म बंधन मुझे काटने हैं, तो मैं क्या करूं, उसके लिए बहुत जोरदार, बहुत ही दिव्य गुण, बहुत शक्तिशाली मूल्य है, वो है क्षमा
जी, जी जी
तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे जी, जी, कि क्षमा देखिए क्या क्या कर सकता है, कितना चमत्कारिक गुण है ये क्षमा।
गीता बहन, जैसे आप युवा हैं और आपके साथ युवा लोग भी रहते होंगे आप संगठन में, हमारे बहुत सारे युवा दर्शक भी हैं और सबके बीच अच्छे से रहते हैं, तो हमारे युवा दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
जो मन में इमेजेस होते हैं तो उसके अनुसार हमें स्थिति बना सकते हैं और लाइफ भी बना सकते हैं, माना वी कैन लिव लाइफ फुल्ली। कि सभी यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि पहले अपने टारगेट के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट करे, और जो जो मैंने सीखा है कि लाइफ में जो डेस्टिनेशन है उसके ऊपर उसको तो जाना ही है, लेकिन जर्नी के ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें। और जैसे लाइफ अफेयर्स है और नया रिलेशंस बनाना है उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से अच्छा पहले जो है उसमें स्टेबिलिटी होकर के होल्ड ऑन करके और गो ऑन करते रहे तो डेस्टिनेशन ऑटोमेटिक हम रीच कर सकते हैं। मैं तो जब भी जो भी कार्य शुरू करते हैं तो इंटरनली मैं एवरीथिंग गॉड को दे देती हूँ कि जो भी है आप करो, तो उससे ही मेरा हर कार्य में क्या फिजिकल लेवल में फर्स्ट नहीं आ पाती हूँ लेकिन माइंड तो स्टेबल रहता है
जी, 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 जी,
तो यही मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जो भी है भगवान का दिया हुआ है तो उसको अगर समर्पित करके हम कर लेंगे तो हम संतुष्ट भी रहेंगे और हमारे जो केयर टेकर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सब है वो भी संतुष्ट रहेंगे
जी 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 जी। विशेष आप लोगों ने ये जानकारी दी कि हमें क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, और अपनी बातों को पकड़ करके न रखें बल्कि बात को शेयर कर दें अपने बड़ों के सामने, और बड़ों का भी कर्तव्य है कि छोटे से कोई गलती हो गई है तो माफ कर दें। आप तीनों समय निकाल करके आए, अपना कीमती समय दिए, हमारे दर्शकों के लिए सुंदर सुंदर विचार रखे, उसके लिए पुनः आप तीनों का धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, सचमुच हमारे संकल्प बहुत महान होने चाहिए, हमें खुश होकर के सब काम करने चाहिए, दुखी होकर के या काम उतारने के लक्ष्य से काम न करें, बल्कि आपका एक मुस्कान का प्रभाव सारे समाज के ऊपर पड़ता है। पता है आपकी खुशी और मेरी खुशी में क्या फर्क है? आप खुश होकर के मुस्कुराते हैं और मैं आपको खुश देख करके मुस्कुराता हूं, और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं आप सदैव खुश रहें, ताकि मेरी भी मुस्कान बढ़ती रहे। इन्हीं विचारों के साथ आज कार्यक्रम को अंत करते हैं। एक सुंदर विचार के लिए लेकर एक सुंदर और नए विषय लेकर के आगे आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और एक सुंदर जीवन की यात्रा को बिताते रहिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।